शांति। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय वंदनीय सर्वमाननीय उषा दीदी उपस्थित है और उषा दीदी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। उषा दीदी अपने 12 वर्ष बाल्य अवस्था में ही इस ईश्वरीय ज्ञान को साउथ अफ्रीका में प्राप्त किया। 1980 से उन्होंने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की और बीच में कई वर्ष हमारे दीदी उषा दीदी बॉम्बे में विरले पार्ले सेंटर पर भी रहते थे, वहां भी उन्होंने बहुत सुंदर सेवाएं की। और जो पहली पद यात्रा निकली थी उसमें हमको याद है, जो हमारा ताजमहल होटल से निकली थी और जहां पर दादी ने उनके सिर पर पहला कलश रखा और तभी से दीदी दिल्ली तक चल के गए थे। तो बहुत दीदी का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इतना लंबी यात्रा यूथ अवस्था में चल के गए। और सेल्फ मैनेजमेंट को कोर्स के द्वारा अनेक कंपनियों में आध्यात्मिकता का नया स्वरूप विश्व के सामने रखा। आपने सारे विश्व में अपने रामायण और गीता के सत्य सार को चित्र सहित विश्व की आत्माओं के सन्मुख बहुत सहजता से रखा। वर्तमान समय आप मधुबन मुख्यालय में आप सेवाएं देने के साथ साथ सारे विश्व में ज्ञान प्रकाश को फैला रहे हैं। वर्तमान समय GTV, जागरण टीवी, संस्कार और पीस ऑफ माइंड पर दीदी जी के नित्य प्रवचन हम सभी सुनते हैं। दीदी जी के लिए 4 बात यही अंग गीत कहूंगी। हीरे सी है चमक आप में दीदी, हीरे सी है चमक आप में, सोने सी है धमक आप में दीदी, सोने सी है धमक आप में दीदी। एक बार जो आपका व्याख्यान सुने, एक बार जो आपका व्याख्यान सुने, खो जाए वो भगवान में, खो जाए वो भगवान में। ऐसे हमारे आदरणीय उषा दीदी अपने को सुनाएंगे बहुत अच्छी ज्ञान की बातें। शांति।
ओम शांति। बाबा हर बच्चों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करता, किसी में कौन सी बात भर देता, किसी को कौन से वरदान से सजा देता, लेकिन बाबा का हर बगिया का फूल न्यारा और निराला है कि दुनिया में उसको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आप सभी में भी कौन सी रंग रूप खुशबू बाबा ने भरी है, समय पर वो बाहर आती है। तो इसी तरह बाबा ने ही ये जीवन बनाया, विशेषताएं भी बाबा ने भरी, वरदान भी बाबा ने दिए। बाबा ने मधुबन में जब से रहने का सौभाग्य दिया तब से लेकर के बहुत सी बातें सिखाई। सभी जानते हैं कि सेंटर का कारोबार अलग होता है, मधुबन की सेवाएं अपनी होती है। तो इसीलिए मधुबन में रखते हुए बाबा ने अनेक विशेषताएं भी भरी और अनेक तरीके से तराशा है। हर एक को बाबा तराशता ही है, जैसे जैसे समय स्थान वैसे बाबा तराशता है। तो आप सभी भी कितने सौभाग्यशाली हो। इसीलिए के वर्तमान समय में मधुबन के इस बेहद प्रांगण में आप लोगों को ये जो बट्टी का चांस मिला है, ये खाली यहाँ का वातावरण बना रहा है ऐसा नहीं, लेकिन आपके मन स्थिति में भी कितना परिवर्तन ले आ रहा है। आपने 3 दिन में तो ये महसूस किया ही होगा, सेंटरों पर भी भट्ठी करते हैं लेकिन तपोभूमि में भट्ठी करने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा लगता है मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक नेचुरल जीवन बन जाता है, नेचुरल अवस्था बन जाती है। और इसी अवस्था के लिए तो जैसे तरसते थे, है ना? आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा वरदान में कि बच्चे अभी अपना व्यर्थ का खाता क्या करो, समाप्त करो, है ना? समय अनुसार बाबा के पिछले 2 सीजन में जो मुरलियां चली उसमें बाबा ने बार बार हमारा ध्यान खींचवाया कि बच्चे व्यर्थ का खाता बंद करो। और व्यर्थ को बंद कैसे करेंगे? व्यर्थ को बंद करने के लिए अपने अंदर कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट करो तो वो बंद होगा, नहीं तो ऐसे कोई ताला मार दे ऐसा तो नहीं होगा, खाली कर दो ऐसा तो नहीं होगा मन, लेकिन उसको रिप्लेस करना जरूरी है। जैसे एक मटका है, मटके में अगर गंदा पानी है उसको निकालना है, बदबू मार रहा है, उठा नहीं सकते, फिक्स मटका है, तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे तो वो गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के एक समय आएगा जब सारा मटका साफ पानी से भर जाएगा। इसी तरह ये बुद्धि और मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उसको समाप्त करने की विधि यही है कि जितना हम शुद्ध अमृत का फ्लो बढ़ने दे, उसमें भरने दे, तो धीरे धीरे वो व्यर्थ को मार्जिन नहीं मिलती है। व्यर्थ पक्का कब बन जाता है संस्कार के रूप में? जब कोई भी चीज को बार बार करो तो वो संस्कार बनता है। लेकिन अमृत को घोलने में, उसका मंथन करने में हम इतने बिजी कर दे मन बुद्धि को, जो व्यर्थ सोचने का उसके पास टाइम ही न हो। और जब व्यर्थ ही सोचने का टाइम नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो संस्कार समाप्त हो जाते और ये संस्कार भर जाता है, जो पॉजिटिव संस्कार है उसको भरने लगते हैं। उसके लिए एक बात विशेष अटेंशन में रखनी है। कौन सी बात? तो बाबा कहे अभी समय अनुसार अपने जमा के खाते पर ध्यान दो। व्यर्थ का खाता समाप्त करने के लिए जमा के खाते पर ध्यान दो, क्योंकि जो जमा करना है वो सब यहां से ही करना है। कितने जमा के खाते तैयार करने हैं? दुआओं का खाता जमा करना है, और पुण्य का खाता जमा करना है, और भी श्रेष्ठ कर्मों का खाता, और श्रेष्ठ संकल्प का खाता, और गुणों का खाता, शक्तियों का खाता। विशेष बाबा ने 3 खाते के बारे में बताया है कि 3 खाते हमारे जमा होने चाहिए। पहला खाता जो है वो है स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। स्व पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता। दूसरा खाता जो है वो है सदा संतुष्ट रहते हुए दुआओं का खाता। जो संतुष्ट रहता है हर बात में, हर परिस्थिति में, हर समय में, उसके प्रति सहज स्वतः दुआएं निकलती है। जो प्रॉब्लम केस बनता है वो उसके लिए दुआएं नहीं निकलती है, लेकिन जो हर बात में हर परिस्थिति में संतुष्ट है, कोई संकल्प नहीं चलाता, तो उसको परमात्म दुआ भी सहज मिलती है, आत्माओं की दुआ भी सहज मिलती है और स्वयं भी संतुष्ट होने कारण जैसे खुद के प्रति भी अवस्था मजबूत होती है। तो दुआओं का खाता का आधार है संतुष्टता की स्थिति। और तीसरा खाता है श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता, क्योंकि ये आधार है। ये तीन खाता जमा करने का आधार, पहला प्रारब्ध का खाता स्वपुरुषार्थ। स्वपुरुषार्थ में सब बातें आ जाती, गुण शक्तियां सब बातें आ जाती है। कितना हम स्वपुरुषार्थ में मना अपने जीवन के अंदर उसको धारण कर रहे हैं, ये स्वपुरुषार्थ, स्वयं की उन्नति के अर्थ, उसी से प्रारब्ध का खाता बनता है, है ना? तो ये तीन खाते जो है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता, ये तीन खाते क्यों जमा करने हैं? क्योंकि बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस संगम के समय की वैल्यू जो है, यहां जो जमा करेंगे वो सारा कल्प चलेगा। तो सारा कल्प का अपने अनेक जन्मों को सींचने का आधार ये खातों से है। अनेक 84 जन्मों को सींचने का आधार ये तीन खाते हैं। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जो है वो सत्ययुग और त्रेता युग के 20 जन्म को सींचता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वपुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खाता, तो प्रारब्ध सत्ययुग और त्रेता युग की है। इसीलिए इतना पुरुषार्थ करना है, अंत घड़ी तक बाबा कहे पेपर भी आते रहेंगे और पुरुषार्थ भी करते रहने का। कई बार कई बच्चे तंग हो जाते, कितने पेपर देने पड़ेंगे, कितने पेपर देने पड़ेंगे। आज एक व्यक्ति अगर आईएएस की एग्जाम के लिए बैठे तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, आईएएस की एग्जाम के लिए बैठना है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है ना? और उसमें इतने कठिन पेपर होते हैं कि उसका रिजल्ट सारे इंडिया में जब आईएएस की एग्जाम होती है तो उसका रिजल्ट खाली 2% निकलता है। मैंने कितना कठिन पेपर होगा जो आईएएस बनते हैं उनके लिए, तो 2% या 3% रिजल्ट निकलता है, बाकी सब बैठे हुए फेल होते हैं, दूसरी बार अप्लाई करना पड़ता है, है ना? और तैयारी के साथ। तो हमने भी जो लक्ष्य रखा है कौन सा है, हाँ, लक्ष्मी, बाबा कई बार पूछते लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है पक्का। तो लक्ष्मी नारायण के पेपर मालूम है कितने हैं भाई? जो डिग्री प्राप्त करनी है तो उसके पेपर का भी तो मालूम होना चाहिए कि कितने पेपर देने होंगे। लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यही है ना उसकी महिमा। अब आप सोचो कि सर्वगुण संपन्न, तो हर गुण का पेपर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नहीं तो मुझे कैसे पता चले कि मेरे में ये गुण है या नहीं है, सहनशीलता मेरे में है या नहीं है, कैसे पता चले? तो सहनशीलता का पेपर तो आएगा कि नहीं आएगा? और जितनी बार हम फेल होंगे उतनी बार फिर लक्ष्य ये रखा है मुझे आईएएस में ही जाना है, तो जितनी बार फेल होंगे तो उतनी बार रीअपियर तो होना पड़ेगा ना। तो गुण कितने हैं? 36 गुण मुख्य है, तो 36 पेपर तो वो हो गया है ना, 36 पेपर तो देना पड़ेगा। अच्छा 16 कला संपूर्ण, तो हर कला का पेपर होगा। अचानक बाबा ऐसा मौका दे देगा समझाओ, तो समझाने की कला भी होनी चाहिए है ना, पढ़ने की कला भी होनी चाहिए, सारी कलाएं। तो सर्व कला 16 कला, तो 16 पेपर ये हो गए। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हर मर्यादा का पेपर आएगा कि नहीं आएगा? और फिर संपूर्ण पवित्रता, मन मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, हर लेवल की पवित्रता का पेपर होगा। अब लक्ष्मी नारायण बनेंगे कि राम सीता बनेंगे? इसीलिए बाबा कई बार नहीं कहते हैं वो बचपन में कि इतना इतना मिर्ची खाएंगे फिर शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं। तो अब तक तो ऐसे लगता था बस लक्ष्मी नारायण बनना है, बड़ी खुशी होती थी लक्ष्मी, लेकिन इतने पेपर देने हैं इसका ज्ञान ही नहीं था ना। तो अब इतने पेपर देने की तैयारी है ना सबकी कि नहीं है? है। तो अब अगर कोई भी पेपर आए तो लक्ष्य ये रखना है मुझे फेल नहीं होना है, ये स्वपुरुषार्थ है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो दिनचर्या है उसमें जो मर्यादा बाबा ने बताई है, हर मर्यादा का एक पेपर है। ब्राह्मण जीवन में संगठन में चलने की मर्यादाएं हैं, बाहर वालों के साथ कैसे रहना है उसकी मर्यादाएं हैं, ये सब बातों का पेपर जरूर देना है ना। और उसके बावजूद कर्म में श्रेष्ठता, तब जाकर के लक्ष्मी नारायण के पद के लिए, इसीलिए 8 ही बनते हैं। 8 ही क्यों बने? तभी तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि अगर मुझे पेपर का पता ही नहीं है तो मेरी आंतरिक तैयारी कैसे होगी, है ना। जैसे कहा आईएएस में जाना है, लेकिन अगर मुझे कौन से सवाल वहां आ सकते हैं ये पता ही नहीं है तो कौन सी तैयारी करके जाऊंगी, तो वहां तो फेल ही हो जाना है ना। तो अभी तक अगर हमारे मन में ये शिकायत है कि इतने पेपर देना है, इतने पेपर देना है, अरे तो यह तो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य ही नहीं रखो ना, राम सीता बनने का लक्ष्य रखो या दास दासी बनने का लक्ष्य रखो, कोई पेपर नहीं आएगा। दास दासी के सामने कोई पेपर नहीं आएगा, इसलिए अब अगर पेपर आए तो खुशी होगी या उदास होंगे क्या? सचमुच या मुंह लटक जाएगा एकदम कि अरे क्या फिर से पेपर आ गया फिर से। और बाबा ने कहा अचानक ही आने हैं पेपर, तो अचानक ही आने है ना, क्योंकि कह करके तो आएंगे नहीं कि हाँ ये तारीख को पेपर आएगा, सहनशीलता का पेपर ये तारीख को, मधुरता का पेपर ये तारीख को। मैं स्कूल में तो ये अनाउंसमेंट होती है, लेकिन यहाँ तो डेट की अनाउंसमेंट है नहीं कि ये पेपर कौन से दिन हमको देना होगा, अचानक आ जाएगा। और उस समय मधुरतापूर्ण व्यवहार न रहा तो मधुरता के पेपर में फेल हो गए तो रीअपियर तो करना पड़ेगा। अब रीअपियर कितनी बार करेंगे? तो अपने आप को सुधार लो ना कि मधुरता का व्यवहार ऐसा संस्कार बना दे कि मधुरता का पेपर कभी भी अचानक आए तो उसके लिए मेरी तैयारी है। तो अब तो डरेंगे नहीं, इतनी मिर्ची खाएंगे खाएंगे हा? इतने पेपर देने की हिम्मत है ना, बस आपको हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, बाबा मदद करेगा। लेकिन हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना है। लेकिन उस समय अगर विस्मृति हो गई तो पेपर में फेल होना स्वाभाविक है। अगर समझा ही नहीं कि पेपर था, समझा ही नहीं, नेचुरल संस्कार से प्रयोग में आ गए तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे, है ना। इसलिए अभी हर वक्त अटेंशन अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने ऊपर ही ध्यान देना है। तो इतना पेपर तो देना पड़ेगा, है ना, देंगे ना। चलो, ये हुआ स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का पेपर, है ना, जमा का खाता। तो प्रारब्ध उतना जमा होगा। फिर दूसरा है संतुष्टता के द्वारा दुआओं का खाता। अब ये कहां काम आएगा, है ना। और श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता, ये कहां काम आएगा। तो 20 जन्म को हमें प्रारब्ध के खाते से चलाना है। इतना प्रारब्ध, इतना पुरुषार्थ करके प्रारब्ध जमा करना है जो 20 जन्म हमारा चल सके। द्वापर के बाद, द्वापर से लेकर कलयुग तक पुण्य के खाते से चलेगा, पुण्य के खाते से हमारा जीवन चलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म से, क्योंकि सतयुग त्रेता में पुण्य का खाता काम नहीं आने वाला है, सतयुग त्रेता में प्रारब्ध से ही, स्वपुरुषार्थ से ही चलेगा। पुण्य का खाता जो है वो द्वापर कलयुग में, इसीलिए द्वापर में फिर जो खाता में कम है तो द्वापर में थोड़ा बहुत अच्छे कर्म करके भी उसको चलाते जाते हैं, कलयुग तक पहुंच गए, है ना। कलयुग का ये लास्ट जन्म भी हम अपना देखें तो दुनिया की भेंट से, दुनिया की आत्माओं से कितना श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। ये तो नशा है अंदर में कि ये लास्ट जन्म में भी हमारे पास क्या क्या है जो दुनिया की आत्माओं के पास नहीं है, हमारे पास क्या क्या है जो दुनिया की आत्माओं के पास नहीं है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, पहले अपना खजाना देख लो, क्या क्या है जिससे मैं जमा कर सकूं। सबसे पहला, इतनी अच्छी बुद्धि है हमारे पास जो अच्छे संकल्प कर सकती है, ऐसा मन है हमारे पास। दुनिया की आत्माओं को देखो कितना चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। हमारा अंतिम जन्म में भी इतनी अच्छी बुद्धि है कि हम सही गलत को पहचान सकते हैं। दुनिया की आत्माएं बाबा के यहां पर भी आ जाते हैं, शिविर करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सही क्या है गलत क्या है पहचान नहीं सकती और वापस चली जाती। तो हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है जो सही गलत को पहचान सकते हैं अंतिम जन्म में, कलयुग के लास्ट जन्म में भी हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि है। इतना अच्छा मन है जो सकारात्मक सोच सकता है, ज्ञान का मनन चिंतन कर सकता है, है ना, मुरली की बातों को ग्रहण कर सकता है। इतना अच्छा मन है, इतना अच्छा चरित्र है जो दुनिया में किसी आत्माओं का नहीं, आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, कलयुग के अंतिम जन्म में भी हमारे पास इतना अच्छा चरित्र है और पवित्र रहने की हिम्मत हमने की है। तो इतना श्रेष्ठ चरित्र है हमारा, है ना, इतना अच्छा दिल है हमारे पास कि जहां हम ईश्वर की बातों को खाली ग्रहण नहीं करते लेकिन दूसरों को देने की क्षमता भी रखते, बड़ी दिल रख सकते हैं, है ना। बाबा को इसीलिए बड़ी दिल वाले बच्चे पसंद होते हैं, देना जानते, दाता के बच्चे बन सके देना जाने। वो इतनी अच्छी दिल है हमारे पास, और क्या क्या है, हाँ, इतनी अच्छी दृष्टि है, इतनी अच्छी वृत्ति है ना। ये जो सारी इंटरनल खजाना वो मेरा खजाना है। और कलयुग के लास्ट जन्म में भी पुण्य का खाता जमा करने के लिए ये सारे साधन जरूरी है, क्योंकि उसी से श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो ये सारा साधन मेरे पास है। तो आप सोचो कि द्वापर युग का पहला जन्म कैसा होगा, पुण्य के खाते से कैसा होगा वो जन्म, श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य का खाता जमा करते हैं, तो पुण्य का खाता इतना जमा करना है जो 63 जन्म उसको चला सके, 63 जन्म चलाना है। तो कितना श्रेष्ठ कर्म का पुण्य का खाता जमा करना होगा, और जमा करने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास है, है ये वरदान है ना। एक प्रकार का संगम युग को हम ब्राह्मणों को ये वरदान है जो दुनिया की आत्माओं के पास नहीं है, हमारे पास है। तो गर्व होता है। आज देखो दुनिया में लायंस क्लब में या रोटरी क्लब वाले जो होते हैं ना, वो एक समाज की सेवा थोड़ी बहुत करते हैं तो भी उन्हें गर्व रहता है, हम लायंस वाले हैं, रोटरी वाले हैं, गर्व रहता है। रोटरी वाले अपना बैज लगा के रखेंगे, लायंस वाले अपना बैज लगा के चलेंगे, इनका गर्व होता है कि भाई ये लायन है, ये रोटेरियन है, सेवा करने वाले, इसलिए उनको अपना बैज लगाने में भी। लेकिन ब्राह्मणों को बैज लगाने में कितना शर्म आता है, यहां तो लगा लेंगे, मधुबन आएंगे, सेंटर पर जाएंगे, लेकिन घर में या अपने कार्य पर जाते हैं वहां कितना लगाते हैं, काम पर भी लगाना उसको, घर में है तो भी ये आभूषण है हमारा, जैसे मंगलसूत्र माताओं का आभूषण है नहीं उतारते हैं ना, तो ये बैज क्यों उतार देते हैं, घर में जाते ही बैज क्यों उतर जाता है, घर में बैज क्यों नहीं लगा सकते। आज से ये भी हमारा शिव बाबा का दिया हुआ सबसे अमूल्य आभूषण है, मुझे लगा के ही रखना है ना। इतने चरित्रवान, अभी दुनिया में ये प्रसिद्धि हो गई है, ये ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम करती है। और देखा गया जो बैज लगा के चलते हैं ना दुनिया में भी, अपने कार्य व्यवहार में, क्षेत्र में, लौकिक में, हर एक उनको बड़ी ऊंची नजर से देख, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, टीवी पर आजकल बहुत अच्छा सुनाते हैं, हम सुनते हैं, कहेंगे कि नहीं, आपको सेवा करने का मौका नहीं मिल जाएगा, और सेवा करने से पुण्य का खाता नहीं जमा होगा, तो मौका ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप मौके चल के आपके पास आएंगे, जिससे लौकिक सेवा तो निमित्त मात्र है लेकिन पुण्य का खाता इसी से जमा होने वाला है। कि दो ज्ञान के बोल भी उनको सुना दिए तो क्या होगा, जमा हो जाएगा। माताएं सब्जी लेने अगर मार्केट में गई, बैग लगा के गई, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, क्या टाइमिंग है वहां का, हम भी जाना चाहते हैं, होगा कि नहीं, किसी को रास्ता दिखाने का भी पुण्य तो जमा हो जाएगा कि नहीं, भले और टाइम नहीं है, रास्ता बताने का तो पुण्य करते चलो कि भाई हाँ वहां चले जाओ, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, बस इतना बोलना है, ज्ञान समझाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, रास्ता बताने की तो सेवा करो, पुण्य तो जमा हो जाएगा, छोटा छोटा पुण्य भी जमा करते जाओ, क्योंकि 63 जन्म इसी के आधार पर चलना है, तो कितना पुण्य चाहिए, है ना। लास्ट जन्म भी इतना अच्छा है तो द्वापर का फर्स्ट जन्म भी तो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए कर्म तो यहां किया होगा कि नहीं किया होगा, है ना, तो अभी करेंगे, है ना? पुण्य का खाता 63 जन्म मुझे चलाना है, क्योंकि वहां पता नहीं द्वापर के बाद जो जन्म मिलेंगे वहां अवसर मिला कि नहीं पुण्य करने का, वो तो मालूम नहीं। इसीलिए जितना यहां छोटा छोटा भी अच्छा कर्म करके पुण्य जमा करते जाओ, एक एक बूंद बूंद भी जमा करते जाओ, 63 जन्म खुद के लिए करना है। इसलिए कहा जाता है जो करते हैं ना इस ज्ञान मार्ग में खुद के लिए ही करते हैं, खुद के लिए, कोई ना कोई खाते में जमा हो रहा है, ठीक है। और दुआओं का खाता कहाँ चाहिए? हाँ, दुआओं का खाता कहाँ चाहिए? हाँ, दुआओं का खाता पेपर के समय चाहिए, जो अंतिम पेपर आने हैं। बाबा ने कहा ना अंतिम पेपर चारों ओर से एक साथ आने हैं, चारों ओर से, प्रकृति से भी, आत्माओं से भी, तो खुद का ही संस्कार पेपर लेंगा, सब सब एक साथ में आना है। तो चारों ओर से जब पेपर आएंगे उस समय उन पेपरों से हमें मक्खन से बाल की तरह निकालने वाले ये दुआएं होंगी। इसलिए दुआओं का खाता बहुत आवश्यक है कि दुआओं के खाते से हर पेपर आसान हो जाएगा, है ना। आज जैसे कई बार कई लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी देखो तो ऐसी खत्म हो गई, लेकिन उनमें बैठे हुए लोगों को एक खरोच तक नहीं आती है, है ना। तो क्या कहते हैं, दुआओं के खाते ने बचाया, दुआओं के खाते के दुआएं सामने आ गई, तो कोई भी पेपर आता है उस पेपर को पार करने के लिए ये दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना दुआओं का खाता होगा तो हर पेपर से बस ऐसे निकल जाएंगे, एक खरोच तक नहीं आएंगी, यानी हमारी स्थिति पर भी खरोच नहीं आएंगी, हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होंगी, हमारी स्थिति हलचल में नहीं आएंगी, ये दुआओं का खाता है। ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता कि बिना पेपर पास किए कोई इस दुनिया से चले जाए, है ना, पेपर तो पास करना ही होगा। तो पेपर पास करने के लिए अंतिम पेपर, खास करके संगम युग का लास्ट समय का जो पेपर है उसको पास करने के लिए दुआओं का खाता बहुत आवश्यक है, वही हमें मदद करेगा। इसलिए ये तीन खाते बहुत जरूरी है। अब ये तीनों खातों को सहज जमा कर ले हम, उसकी विधि क्या है? सबसे पहले तो उसकी चाबी क्या है, उसकी चाबी कौन सी है पता है? हाँ, तीनों पेपर आसानी से हम क्रॉस कर सके, उसकी चाबी क्या है? तीनों खाते को जमा करने के लिए चाबी, सहज जमा कर ले, बड़ी दादी जी को याद करो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल निर्मलता, ये तीन जो है ये चाबी है। बड़ी दादी जी ने, जब भगवान ने भरी सभा में ये कह दिया कि दादी जी 95% पास है, तो दादी जी के जीवन का आधार क्या था? निमित्त, निर्माण और निर्मल। तो ये चाबी है, सभी खातों को जल्दी जमा करके संपन्न होने के लिए, क्योंकि ये जब नेचर बन जाए ना तो किसी के साथ हमारे संस्कार, बड़ी दादी जी का संस्कार किसी से टक्कर खाया? खाता ही नहीं था, क्योंकि निमित्त, निर्माण और निर्मल, किसी से संस्कार टकराने वाली बात ही नहीं, सहज। और इतना सहज सरल व्यवहार हो जाता था, निमित भाव से ना अभिमान। जहां आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ का खाता क्यों चलता है, अगर ये तीन खाते नहीं है तो व्यर्थ का खाता चालू हो जाता है। तो व्यर्थ का खाता क्यों चलता है, अभिमान और अपमान। तो निमित निर्माण रहो तो जमा का खाता बढ़ेगा। इसलिए ये चाबी है, मास्टर की है। अच्छा, ये चाबी का नंबर क्या है पता है? हाँ, ये चाबी का नंबर क्या है पता है? हैं? 30, तीन बिंदी ये उसका नंबर है कि फुल स्टॉप लगाओ। कोई भी बात अगर आए भी तो लीकेज नहीं होना चाहिए। हमारा ये जमा के खाते लीकेज बहुत हो जाता है। हम जमा करते एक तरफ, योग करके जमा करते हैं तो दूसरे तरफ लीकेज होता है। लीकेज कैसे होता है? जैसे ही संस्कार टक्कर हुआ, व्यर्थ का संकल्प चालू हुआ अंदर में, तो व्यर्थ जो है लीकेज ऐसा शुरू कर देता है, जो जमा किया वो लीकेज होना। इसलिए दिन के अंत में जब लीकेज ज्यादा हो जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है, फीलिंग आ जाती है ना, फ्लू लग जाता है। फीलिंग का फ्लू लग गया क्योंकि सारी ताकत क्या हुई, लीकेज हो गई, सारी बह गई। तो योग करके जमा किया, लेकिन जैसे व्यर्थ संकल्प चालू हुआ कि ये सारी शक्ति अंदर की लीकेज होने लगती है, और कभी कभी उसके अंदर साथ साथ हमारा पुण्य का, दुआओं का खाता, शुभ भावना, शुभ सब समाप्त होने लगता है ना। इसीलिए जैसे ही महसूस हो कि कहीं से लीकेज चालू हुआ, क्या करो, तुरंत वहां पर फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने का मतलब कोई चीज थोड़ी उठा करके यहाँ चिपका देंगे, है ना, बिंदी चिपका देंगे। ऐसे थोड़ी है माताएं बिंदी चिपकाती है। यादगार तो यहाँ की है, बिंदी चिपकाओ यहाँ, लेकिन वो बिंदी चिपकती नहीं इसलिए ये बिंदी चिपका दिया, है ना। लेकिन ये बिंदी चिपकाते समय भी याद रहता है मुझे फुल स्टॉप वाली बिंदी चिपकानी है। तो फुल स्टॉप वाली बिंदी कैसे चिपकेगी, कैसे चिपकेगी? तो फुल स्टॉप मान लगाना, माना किसी ने मुझे खास फोन करके पंजाब से फोन किया, बहन जी बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन कोई चीज थोड़ी उठा के लगा दिया, है ना। तो ये फुल स्टॉप कैसे लगाना होता है ये बताओ, है ना। तो कैसे लगाएंगे, मेरा भी चिंतन चला, सचमुच कोई चीज थोड़ी है उठाकर लगा दिया, कैसे लगाएंगे फुल स्टॉप? ड्रामा की पटरी पर कैसे खड़े हो जाएंगे, कैसे खड़े होंगे, क्या सोचेंगे उसके लिए, क्या सोचेंगे? नथिंग न्यू सोचेंगे। और हर बात में कल्याण समाया हुआ है, हर बात में कल्याण है। अकल्याण मेरा संगम युग पर हो नहीं सकता है, मेरा बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे को वरदान मिला हुआ है, तो मैं कल्याणकारी बाप की संतान जिसका कल्याण ही कल्याण है। तो कल्याण मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है, यह है बिंदी लगाना। तो सारा व्यर्थ संकल्प जो चल रहा है ना समाप्त हो जाएगा। कल्याण सोचो, क्या कल्याण हो सकता है, अच्छा इसमें क्या कल्याण हो सकता है। एक बहन ने मुझे कहा कि देखो बहन जी हमारी गीता पाठशाला चलती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी आते समय आ रही थी ऊपर तो नीचे एक बहन माताएं जो आई हुई है भट्टी में, तो कहती बहन जी हमारी गीता पाठशाला चलती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है गीता पाठशाला चलती है। तो कहा हमारे गीता पाठशाला में 25 स्टूडेंट है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मुबारक हो आपको, इतनी मेहनत करके 25 स्टूडेंट आपने बनाए। कहा नहीं, हमको ज्यादा बनाने का है ना, तो इसीलिए हम आपके पास आए। लेकिन स्टूडेंट बनते नहीं है, और उसके लिए इतना मैं समझती हूं कि कहीं ना कहीं मेरी अवस्था में आज जो बाबा ने कहा कि व्यर्थ चलता, मैं व्यर्थ बहुत चलता है मेरा। मैंने कहा किस बात को लेकर व्यर्थ चलता है, तो उसने उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया कि हमने अपने गांव में सोचा कि भाई जो ये क्या बोलते हैं उसको, मामलतदार की ऑफिस होती है ना, वो क्या कचहरी होती है, तो क्या तहसीलदार, हाँ तहसीलदार की जो ऑफिस होती है, तो हमने सोचा रक्षाबंधन में इस बार सबको राखी बांधे और संदेश दे। उनका बहुत अच्छा, तो कहा जो भाई अपने पास में आता है गीता पाठशाला में, वो तहसील में ही वो उसी ऑफिस में काम करता है, तो उसको कहा कि भाई तुम सब पूछो अगर वो रक्षाबंधन का प्रोग्राम रखे तो। उसने भी पूछा और स्वीकृति मिल गई कि हाँ जरूर आओ और रक्षाबंधन करो, सबको संदेश दो। तो फिर हमने बहन जी को फोन किया, बहन जी ऐसा हमको प्रोग्राम मिला है, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई बहन जी को तो जरूर सुनाना चाहिए, मेन सेंटर है उसको तो जरूर सुनाना चाहिए। तो कहा कि बहन जी को, हमने कहा कि हम जाएं हम राखी बांधने के लिए ऐसे, तो बहन जी ने कहा नहीं यहां से हम, मैं बहन को भेजूंगी। तो कहा मेरा इतना व्यर्थ संकल्प चलने लगा कि मैंने सारा प्रोग्राम बनाया और अभी दूसरी बहन आएंगी और वो सारा मान क्रेडिट तो वही ले जाएंगी, तो मेरे हिस्से में तो कुछ आएगा। देखो कैसे व्यर्थ संकल्प चलता है, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कैसे व्यर्थ संकल्प। कहती है मेरा इतना व्यर्थ चला कि मेरे को बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके सेवा का सारा प्रोग्राम बनाया और बहन जी ने सीधा मना कर दिया। तो इसमें कैसे कल्याण समझूं, मैं कैसे समझें कल्याण भाई बहन जी, वंदना में नाम बताओ इसमें क्या कल्याण समाया हुआ। हाँ मेरे से ज्यादा पावरफुल वो आत्मा होगी, और क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव क्या सोचना चाहिए। हाँ उसका लाभ हमें ही होने वाला है। अच्छा है कि बहन जी ने टाइम तो दिया, कम से कम कोई बहन को भेजा, नहीं तो हम लोग ही सेवा करते थे, लेकिन इस बार बहन जी ने भेजा, कितनी अच्छी बात है, समय निकाल करके हमारे पास भेजा। कितनी पॉजिटिव सोचने की बातें हैं, है ना। मैंने उस बहन को कहा कि देखो कोई भी सेवा करते हैं ना हम, आप निमित्त बने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए निमित्त बने, तो निमित्त बनने का जो भाग्य है वो सेवा करने के भाग्य से कई गुना अधिक है, तो आप सारा भाग्य खा जाएंगे क्या, दूसरे को भी तो चांस दो। निमित्त बनने का भाग्य आपने खाया तो सेवा करने का भाग्य किसी और को दो, जितना बांटेंगे, बांट के अगर करेंगे तो वृद्धि भी अच्छी होगी, है ना। बड़ी दिल रखो, सब कुछ मैं ही करूं ये नहीं सोचो, निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। बाबा हमेशा कहते हैं एक है सेवा करने का भाग्य, एक है निमित्त बनने का भाग्य, तो जो निमित्त बनता है वो बहुत भाग्य, उसका भाग्य बड़ा हो जाता है, जो सेवा करता है उसका भाग्य उससे कम होता है। तो आपको कौन सा भाग्य खाना है, निमित्त बनने का भाग्य खाओ ना तो संतुष्ट रहो ना, है ना। तो कहते आज मैं हल्की हो गई, आज मैं हल्की हो गई, नहीं तो इतना दिन से रक्षाबंधन कब गई, रक्षाबंधन से लेकर के अब तक कितना व्यर्थ चला होगा उसका, सोचो आप। मैंने कहा कितना लीकेज कर दिया तुमने, तो सारा कितना लीकेज हो गया तेरा। तो कहा रोज बाबा इसलिए मुरली में लगातार कितने दिनों से कह रहा था कि व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो, चाहे वरदान स्लोगन किसी भी रूप में कह रहा था मुरली के अंदर। मैं जानती थी ये पॉइंट मेरे लिए है, लेकिन उसके बाद भी बंद नहीं कर सकती थी। देखो माताओं को पकाना की आदत पड़ी हुई है ना, क्या करे, विचारों को भी पकाते रहती है अंदर में, तो क्या होगा अंदर में पकाते रहने से, फायदा तो कुछ होगा नहीं, जल के खाक हो जाएगा वो, तो पकाया 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 तो क्या होगा। इसलिए कई बार जो है हर चीज में कल्याण है ये समझना माना फुल स्टॉप लगा देना कि हो सकता है कि मुझे इस समय कल्याण नजर नहीं आ रहा है लेकिन आगे चल करके कल्याण नजर आएगा मुझे। तो इसीलिए कल्याण को ढूंढते रहो तो मिल जाएगा। जितना कल्याण को ढूंढते रहेंगे उतना रास्ता भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन उस पर फोकस तो करो, अपने विचारों को उस दिशा में केंद्रित करो, तो जितनी ऊर्जा उस दिशा में जाएंगी तो नए नए विचार अच्छे अच्छे आने लगेंगे। जितना व्यर्थ में अपने फोकस बनाएंगे, मन को केंद्रित करेंगे, तो हमारी सारी ऊर्जा किस में जाएंगी? व्यर्थ में चली जाएंगी, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये तीन बिंदी, ये नंबर जो है ना, लगा दो, इसमें भी कोई कल्याण है ना, कि चलो बहन जी ने इस बार तो समय निकाल करके किसी न किसी को भेजा इतनी अच्छी सेवा के लिए, नहीं तो हर बार तो हम ही करते थे लेकिन इस बार तो भेजा किसी को। तो ये सोचो, पॉजिटिव सोचो, मैंने उसको कहा। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के काफी व्यर्थ संकल्प अंदर में क्या होता है, हिलना चालू हो जाते हैं, पकता रहता है ना, और पक पक करके फिर जल जाता है तो बदबू निकलने लगती है फिर। इसीलिए उसको जलाओ नहीं, जितना हो सके अच्छे विचारों को चलने दो तो उसकी खुशबू बाहर फैलेगी। तो खुशबू बाहर फैलाओ तो सेवा भी अच्छी होती जाएंगी, अपने आसपास भी आप महसूस करेंगे कि अच्छी सेवा हो सकती है ना। फिर भी अगर उसको फास्ट करना हो, तीनों खाते को जमा फास्ट करना है, तो उसका यंत्र क्या है? उसका यंत्र क्या है? यंत्र है मंत्र। कौन सा मंत्र? मन मना भव का मंत्र। तो जमा के खाते को फास्ट करने के लिए यंत्र है मंत्र, और मंत्र है मन मना भव। जितना मन मना भव की स्थिति में रहेंगे उतना ये जमा का खाता फास्ट हो जाएगा, है ना। और इसकी निशानी क्या, हमारा खाता जमा है उसकी निशानी क्या? खुशी होगी, हल्के रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे और निश्चिंत स्थिति हो जाएंगी और सही निर्णय ले सकेंगे और भी हरेक के प्रति अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना निकलने लगेगी, क्योंकि भरपूर है ना, तो जो भरपूर है वो देना चालू करता है अपने आप। जिसके पास बहुत ज्यादा है, जिसके पास कम है, वो शुभ भावना नहीं दे सकता है, लेकिन जिसके पास खाता भरपूर है तो वो शुभ भावना, शुभ कामना देना चालू करेगा, है ना। तो उससे भी खाता और भी बढ़ना ही है, जितना देते जाओ उतना बढ़ता जाएगा, देने से कम नहीं होगा लेकिन और भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो एक तो देना चालू करो, दूसरा खुशी का अनुभव होगा, हल्कापन महसूस होगा, संतुष्ट रहेंगे और स्थिति हमारी निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि निश्चिंतता की स्थिति रहेगी। तो ये पहचान है कि हाँ मेरे खाते तीनों जमा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब स्वपुरुषार्थ के लिए भी तैयार, कितने भी पेपर आ जाए लक्ष्मी नारायण, इसलिए बाबा ने गारंटी तो दी है कि 108 की माला में जितने ज्यादा हो गए लड़ियां लगाता जाऊंगा, जितनी लड़ियां लगानी पड़े बाबा को बाबा लगा देगा, है ना। लेकिन आप तैयार हो जाओ, बस बाबा 108 की माला के अंदर भी लड़ियां लगा, महाराजा महारानी 8 बनेंगे लेकिन बाकी तो राजा रानी बनने का तो मार्जिन है ना। कोशिश हमें वही करनी है लेकिन राम सीता तो बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है, भले कितने भी पेपर देने पड़े, है ना, कितनी बार भी रीअपियर होना पड़े फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आशा नहीं छोड़ेंगे, देते जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते कदम कदम पर पेपर भी आएंगे, क्योंकि लक्ष्य ही हमने ऐसा रखा है, लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो इसके लिए अभी तैयार है ना सभी, है ना, ठीक है। अच्छा,
दीदी आपके लिए तो दिल से दुआएं बहुत निकलती है, और आपको ही चलाने वाला दुआओं का खाता वो झलकता भी है और अनुभव भी होता है। ऐसे दिल की आशाएं भी भाई बहनों की आपके प्रति बहुत रहती है। मधुबन में आएंगे तो उषा दीदी का क्लास होगा कि नहीं, उषा दीदी मधुबन में होगी कि नहीं, ये प्रश्न वहां ही उठता है। हम कहते मधुबन तो पहुंचो सब मिलेगा।
देखो आपके पहले जितने ग्रुप आए, 2 महीना मैं यहाँ नहीं थी, अभी 10 दिन पहले ही आई है आपके पहले, तो आपके ग्रुप के लिए जरूर आ गए। आप लोगों का खिंचाव इतना था ना, तो खींच लिया।
ताली बजाओ जोर से, वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह उषा दीदी वाह,
वाह वाह बाबा वाह।
दीदी कुछ प्रश्न है।
हाँ जी।
जब हम लोग नयों को ड्रामा का ज्ञान सुनाते हैं, हर 5000 वर्ष जो पाठ है हूबहू रिपीट होता है, अगर कोई जॉब करता है, मान लो कि कहीं बार माताएं घर में जैसे परिस्थिति होती है तो कमाने की आवश्यकता होती है, पर अनपढ़ भी माताएं होती है और उन्हें फिर सेवा भी करनी होती है, बाबा का हम बन गए हमसे भी कुछ सेवा हो, और फिर ऐसा कार्य होता है कि जैसे घर काम करना पड़ता है, कहीं बार सबके पास जाके भोजन बनाना है या बर्तन मांजने का काम है या इस प्रकार के कुछ काम होते हैं, तो वो लोग कहते हर 5000 वर्ष बाद, क्या यही काम हमें करना पड़ेगा हा? तो पुरुषार्थ करके इसमें कुछ चेंज नहीं आ सकती क्या?
ऐसा है, अभी हम अमेरिका गए थे ना, तो हमारे साथ राम श्लोक भाई चले थे, तो जहां क्लास कराते थे ना, तो वो एक बात को लेकर के बहुत हंसाता था सबको, कहते अभी किसका राज है पता है, हैं? अभी किसका राज है, बहू का राज है,
बहू का राज,
बहू का राज है, कौन सी बहू, हू बहू, हू बहू का राज है, ड्रामा हू बहू जो है उसी का राज है, माना जो होगा वो तो बाबा ने हमें ये सीक्रेट बताया है, ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा, ये चीज बाबा ने संगम पर क्यों बताया हमें, ये सीक्रेट बताई है, ये ड्रामा की सीक्रेट है, क्यों हो, क्या होगा उससे, ये सीक्रेट जान करके दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन ड्रामा का ज्ञान, ये सीक्रेट जो हमें बताया है, उससे कई बातों से हम अपने व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो पार्ट हमें मिला है उस पार्ट को हम खूबसूरती से निभाए। देखो आज एक ड्रामा होता है ना, स्टेज पर ड्रामा प्ले करने वाले, उसमें एक राजा का पार्ट भी होता है, एक भिखारी का पार्ट भी होता है, लेकिन कभी कभी भिखारी वाला पार्ट इतना अच्छा बजाता है कि अवार्ड राजा को नहीं मिलता है, भिखारी को मिल जाता है ना। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें ये पार्ट मिला है, क्यों मिला है ये पार्ट, तो उसमें उदास न हो जाओ कि मुझे यही पार्ट क्यों मिला, है ना, क्योंकि आप जितना बेहतरीन तरीके से ये पार्ट बजा सकता है उतना कोई नहीं बजा सकता है, इसीलिए ये पार्ट ड्रामा ने आपको दिया है, क्योंकि उसी पार्ट पर आप अवार्ड विन कर सकते हैं बाबा से, और यही आपको श्रेष्ठ प्रारब्ध का अवार्ड प्राप्त करा सकती है। तो इसीलिए
देखो कोई भी पार्ट को देखने में दो नजरिया होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव नजरिया को अपनाएंगे तो दुखी होंगे और ना आप अपना पार्ट अच्छी तरह से बजा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बर्तन मांजना है या कोई भी है और उसमें बुद्धि का काम तो नहीं है, आप सोचो बुद्धि का काम तो नहीं है, अब बर्तन मांज रहे हैं तो उसमें बुद्धि तो उस समय फ्री है ना, तो उस समय बाबा की याद में अगर उसको मांजेंगे तो जमा भी होता रहेगा। अब दुनिया में जो ऑफिस में बैठे हैं आप सोचेंगे इसका पार्ट कितना अच्छा, लेकिन ऑफिस में उतना बुद्धि का काम लगाना पड़ता है, बुद्धि का काम करना पड़ता है कि वो बाबा को याद भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये पार्ट जो मिला उससे तो बाबा की याद सहज आप बना सकते हैं। अभ्यास खाली डेवलप करने की बात है कि बर्तन मांजते समय अगर मैं ये सोचना चालू करूं कि ऐसे ही मुझे अपनी आत्मा को भी चमकाना है, इतना सुंदर चमका, अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छे अच्छे विचार करो, है ना। जब मैं सेंटर पर थी, मैं अपना एक अनुभव आप लोगों को सुनाती हूँ कि मैं जब सेंटर पर थी तो यहाँ से मैं जब पार्ला गई थी तो पार्ला में मुझे इसलिए भेजा था बड़ी दादी जी ने कि भाई वहाँ विदेशी लोग आते हैं तो एक इंग्लिश हैंड चाहिए, तो इसीलिए। तो उस समय में कोई इंग्लिश हैंड नहीं था, कोई बहने ऐसी इंग्लिश बोलने वाली नहीं थी, तो इसीलिए मुझे भेजा वहां पर। योगिनी मैन बोलते थे और बाकी मतलब इनको मुरली सुनाना, कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कोई भी चीज चाहिए, तो कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं था, तो इसलिए मुझे वहां भेजा था। अब मुझे जो ड्यूटी थी पार्ला के अंदर सेंटर पर के एयरपोर्ट की ड्यूटी खास करके मुझे दिया था कि एयरपोर्ट पर जाना, जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको ले आना, उनको आगे की फ्लाइट का रिजर्वेशन करा के देना या ट्रेन का रिजर्वेशन, फ्लाइट का रिजर्वेशन, माना ये सब जो है फॉरेनर्स से संबंधित सारी सेवाएं थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक विदेशी भाई आया तो वो वीजा लेके नहीं आया, ऐसे ही टिकट निकाली और बैठ गया प्लेन में, तो यहाँ इमिग्रेशन वालों ने उसको रोक लिया कि कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, बिना वीजा कैसे आ सकता है, तो उसको वापस दूसरी फ्लाइट में भेजो। अब वो बेचारा इतना पैसा खर्च करके आया था तो नेचुरल है जिसने सारा साल बचाया हो तब जाके मधुबन की टिकट निकाली हो और यहां तक पहुंचने के बाद, इस धरनी पर पैर रखने के बाद उसको कहे कि नेक्स्ट फ्लाइट में तुमको वापस जाना है, तो उसका तो नेचुरल है कितना संकल्प चलेगा। तो उसने इमिग्रेशन वाले को कहा कि मैं एक फोन कर सकता हूं, कहा करिए। तो उसने पार्ला सेंटर पर फोन किया कि मैं आया हूं लेकिन मुझे नहीं पता था कि वीजा लेके आना पड़ता है, नए नए होते हैं, पहली बार ट्रैवलिंग करते हैं तो सारे कायदे कानून नहीं मालूम होते हैं, तो कहा मैं वीजा लेके नहीं आया, मेरे को अगली फ्लाइट माना रात की फ्लाइट में वापस भेज रहे हैं, तो कैसे भी करके मुझे मधुबन में जा सकूं, मैं बहुत मेहनत करके पैसा बचाया है और तब जाके टिकट निकाली है। तो मेरे को योगिन मैंने कहा जाओ तुम, तो मैं गई अंदर। अभी उस समय पहचान ऐसी हो गई थी तो मैं इमिग्रेशन तक जा सकती थी, तो मैंने उस भाई का पासपोर्ट आदि लिया और लेकर के मैं सीधा वहां जो है अपना चर्च गेट पर गई जहां पर ये वीजा लगवा सकते हैं, ठप्पा लगा सकते हैं 15 दिन का, तो लेकर के गई और वापस आई, उसको दिया ताकि उसको छोड़े, और छोड़ करके मैं सेंटर पर जब आई तो लगभग 3 बज गया था। तो 3 बजे जब मैं किचन में गई, भूख मुझे बहुत लगी थी, तो मैं जब गई तो उस दिन कोई मेहमान आ गए थे तो सारा खाना खत्म हो गया था। अब आप सोचो सारा दिन एक तो काम करके व्यक्ति आए और उसको जरा भी कोई खाना न हो, अब खा लिया था और वो बहन को भी भूल गया कि ये बाहर गई हुई है, ये भी उसको भूल गया तो वो सो गई थी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा कुछ खाना है क्या, कहीं और रखा हो, तो उसने कहा नहीं खाना खत्म हो गया। तो मैंने कहा कुछ तो रखते थे मेरे लिए, आपको पता था कि मैं बाहर गई हुई हूं, तो उसने कहा अरे तुझे क्या मालूम, सारा दिन हम लोग किचन में कैसे पकते हैं, है ना, सारा दिन किचन में काम कैसे करते हैं, तेरे को क्या मालूम, तेरे को तो घूमना ही तो है, सारा दिन घूम के आई है तुम, है ना। उसने ऐसा बोल दिया, तो मुझे है ना बड़ी फीलिंग आई। नए नए तो होते हैं, उस समय नए नए थे, तो इतनी कोई परिपक्वता ज्ञान की तो नहीं थी, बचपना ही था एक प्रकार का। तो मेरे को बड़ी फीलिंग आई, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मूड ऑफ हो गया तो शाम को बहन जी ने पूछा, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है ना। तो मैंने कह दिया, अब कल से लेकर के मैं बाहर जाना नहीं, मैं घर में सेवा करूंगी, जो सेवा देंगे अब मैं घर में करूंगी, बाहर मैं जाना नहीं। बोली, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा, एक तो बाहर सारा दिन मैं धूप में घूमती रही, और ये कहती तेरे को घूमने की सेवा है, तेरे को क्या होता है, कुछ भी खा ले तुम, है ना। तो मेरे लिए कुछ खाना ही नहीं बचा था। बचपने के दिन भी कैसे होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। तो मैंने जब कह दिया, अब मैं कल से लेकर बाहर जाना नहीं, ये जाए बाहर, मैं घर में करूंगी, चाहे किचन की सेवा दे दो, चाहे मुझे झाड़ू पोछा की सेवा दे दो, जो भी सेवा देंगे मैं घर में करूंगी। तो बहन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछे की सेवा कर, है ना। मैंने कहा करूंगी। अब पहले दिन तो उमंग उत्साह से मैंने झाड़ू पोछा मारना शुरू कर दिया। मेरे को कह दिया, पहले फ्लोर का झाड़ू पोछा तुझे करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं झाड़ू पोछे की सेवा करूंगी। बड़ा उमंग उत्साह से चला, मैं रोज झाड़ू पोछा मारती रही, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है इसमें, है ना। अभी मैंने खुद होकर के मांगी है सेवा, कि मैं चाहे तो झाड़ू पोछे की सेवा करूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अब मैंने ही मांगा ना, तो अभी व्यर्थ संकल्प चलाने का कोई मतलब नहीं है मुझे। तो मैंने एक युक्ति अपनाई, और मैं सोचती थी कि देखो, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूं ना बाबा के घर में, तो मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है। बाबा कहते हैं ना, दधीची ऋषि की समान हड्डी हड्डी देनी है, मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है। बाहर जाती थी तो शायद मेरा मुख से मैं जो सेवा करती थी तो एक इंद्रिया पावन होती, यहां तो सब इंद्रिया पावन हो रही है। तो इतना जब खुशी का मुझे नशा चढ़ता था कि मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है, और मैं जो है तो कभी भी माना कैसे सोच को किस दिशा में ले जाना है, ये एक बात बता। और वो चीज ने मुझे इतना मदद किया कि क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, मैंने पॉजिटिव सोचा, तो जैसे कि मैं उस पेपर में पास हो गई, बाबा ने मुझे पास कर दिया। तो जैसे ही पास हो गया, आखिर बाबा ने मुझे इतनी अच्छी सेवा दिया, उसी के बाद में पदयात्रा की सेवा, गांव गांव में चलने का सेवा मैंने जैसे किया, कहने का भावार्थ बाबा ने इतनी अच्छी सेवा और मुझे इतना एक्सपीरियंस बनाना शुरू किया, मेरी परिपक्वता बढ़ने लगी अंदर में, ज्ञान की परिपक्वता, कि उसके बाद मुझे कोई भी सेवा मिलती थी मेरा कभी संकल्प नहीं चलता था कि आज दिन तक। और ये चीज ने ही शायद मुझे ये पॉजिटिव विचार की जो एक युक्ति अपनाती थी, हर बात में युक्ति अपनाओ तो आप नेगेटिव से मुक्त हो जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव सोच सोच करता, मैं अपना भाग्य इतना ऊंचा नहीं बना पाती थी, यहां तक मैं नहीं पहुंच सकती थी, है ना। तो कहने का भावार्थ, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आप अपने आप में गिरते जाएंगे, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी ये नहीं होगा। लेकिन जितना आप पॉजिटिव सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, तो देखो बाबा कहां से कहां पहुंचा देता है। ये पेपर आया, उस समय मुझे फीलिंग आई, लेकिन उसके बाद मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। तो व्यर्थ सोचने से कितना खाता, कितना हमें शक्तिहीन होना पड़ता है, कितनी हमारी एनर्जी ऊर्जा सारी लीकेज हो जाती है, कि व्यक्ति को एकदम ये कर देता है, खुशी नहीं रहती है। लेकिन ये मैं झाड़ू पोछा करके भी मुझे खुशी होती थी। और उन्हीं दिनों में दादी गुलजार आई थी अपना ऑपरेशन करने के लिए, तो मेरे को योगिनी मैंने कहा कि अब देखो, झाड़ू पोछा के साथ साथ दादी का बाथरूम जो है, बाथरूम लेटरिन आदि सब तेरे को साफ करना, और अच्छी तरह से डेटॉल डाल करके दादी को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब मैं झाड़ू पोछा करती थी तो दादी देखती थी, कि सुबह ये मुरली पढ़ती है और दिन में ये झाड़ू पोछा करती है। टीचर एक झाड़ू पोछा करे, दादी को इतना प्यार आता था। झाड़ू पोछा करने के बाद, बाथरूम साफ करने के बाद गुलजार दादी मुझे बुलाती थी, स्पेशल टोली खिलाती थी। और यही सेवा ने मुझे दादी के इतने करीब लाया था, इतना करीब लाया है ना, कि आज दिन तक दादी का जो प्यार है ना वो कभी कम नहीं होता है उसी बात को लेकर के, है ना। तो कई बार हमें नेगेटिव सोचने का, मैं अगर चाहती थी तो कितना नेगेटिव सोच सकती थी, लेकिन दादी जब देखती थी ना कि खुशी खुशी से ये करती है, झाड़ू पोछा मारती है खुशी खुशी से, मेरा कभी चेहरा ये नहीं होता था। तो जब दादी देखती थी तो कई बार दादी ने पूछा भी, अच्छा तुम कैसे करती हो ये खुशी खुशी से, तेरे को फील नहीं होता है? मेरे को पूछा एक दिन दादी ने, टेस्टिंग लिया। मैंने तभी कहा, नहीं दादी मेरी हड्डी हड्डी पावन हो रही है ना, इसीलिए मुझे खुशी होती है। तो जब दादी सुनती थी ना तो दादी को बड़ा अच्छा लगता था। ये चीज ने मुझे दादी के नजदीक लाया, और सचमुच ये एक भाग्य ऐसा था पॉजिटिव सोचने का, कि सभी दादियों के जो नजदीक आने का भाग्य मिला, क्योंकि दादी गुलजार से जो आता था ना उसके सामने, देखो ये टीचर देखो, है ना, सुबह मुरली पढ़ती है क्लास में और बाद में झाड़ू पोछा करती है। जितनी भी दिल्ली की बहनें आती थी, कोई भी आता था, दादी एग्जाम्पल देती थी। मेरे को पता नहीं था, लेकिन दादी की जो ब्राह्मणी है नीलू बहन, वो मुझे सुनाती थी कि दादी तेरा एग्जाम्पल सबको दे रही है। मुझे तब वंडर लगता था, झाड़ू पोछे का एग्जाम्पल देती है दादी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि देखो एक सेवा है, लेकिन बाबा के घर की सेवा मैंने कभी न मुंह चढ़ाते हुए वो सेवा नहीं किया। वो सेवा ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया।
एक प्रश्न और है बाबा जी, दीदी
हाँ जी,
बाबा की हम मुरली भी सुनते हैं, क्लासेस भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चलता ही रहता है, ऐसे महसूसता आती है। तो उसकी कुछ ऐसी टेक्निक बताएं कि जिसको हम कंट्रोल कर सके।
इसका मतलब कि मुरली सुना, लेकिन वो मुरली चली कितनी अंदर, उसका विचार सागर मंथन करके कितना हमने उसको, जैसे बाबा कहते हैं गैया घास खाती है फिर उगारती है, तो कितना उगारा उसको। सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि कई लोग इस बात का फक्र करते हैं, मैंने जब से ज्ञान में शुरू किया तब से मुरली कभी मिस नहीं किया। ये बात तो है, लेकिन परीक्षा आने के समय वो स्थिति कहाँ रही? सबकॉन्शियस प्ले, वो ज्ञान में चले, लेकिन ज्ञान हमारे में कितना चला, है ना? क्योंकि नंबर उसी के आधार पर बनना है। एक ही क्लास में होते हैं सभी, 50 स्टूडेंट होते हैं जैसे स्कूल में भी, सभी रेगुलर क्लास करते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी नंबर वार तो बन जाते हैं ना। तो इसी तरह मुरली मैंने कभी मिस नहीं की, लेकिन वो मुरली मैंने कितना उगारा, तब जाकर के सबकॉन्शियस लेवल पर उसको ले जाओ। जितना उसको सबकॉन्शियस लेवल पर ले जाएंगे तो सबकॉन्शियस लेवल पर जो व्यर्थ या दूसरे दूसरे विचार चलते हैं उसके बदले यही चलेंगे। इसलिए उगारने की आवश्यकता है।
और एक बात है, योग बल के जन्म के बारे में थोड़ा आप डिटेल बताइए प्लीज।
है
योग बल से जन्म होता सतयुग में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बाकी एक दो दीदी दे देंगे उसके जवाब, वो मैं दीदी को प्रश्न दे देती, ये थोड़ा बता दीजिए।
योग बल से जो जन्म है वो संकल्पों से है। यानी जैसे बाबा ने कहा है कि जब एप्रोप्रिएट एज होती है, जैसे 75 साल की एज होते ही उसी वक्त वो संकल्प उत्पन्न होगा, और संकल्प उत्पन्न होकर के जैसे लक्ष्मी नारायण है तो वो संकल्प से, मुख से बोलने की भी बात नहीं, लेकिन जैसे संकल्प से वो वाइब्रेशंस देते हैं, एक दूसरे को प्रति एक जैसे वाइब्रेशन पहुंचाते हैं। और अभी साइंस का जो लेटेस्ट रिसर्च है, क्योंकि बाबा कहते हैं हर चीज का जो है एक सबूत कहो या ज्ञान कहो यहाँ प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन यहाँ नहीं होगा। जैसे पुष्पक विमान संकल्पों की गति से विमान चलाने के लिए, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कि एक व्यक्ति ने छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया और उस चीज को, तो कंप्यूटर को खुद का संकल्प तो नहीं चल सकता, इसलिए उसने कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग दिया, वो संकल्प दिए माना टाइप किया सारे, और वो जो है कंप्यूटर के माध्यम से वो संकल्प उसने दिए, तो वो छोटा सा उसने घर में ही वो उड़ाया प्लेन कंप्यूटर के वाइब्रेशन से। माना ये चीज हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे संकल्पों से होगा ये, तो अभी विश्वास होता है कि हाँ पुष्पक विमान इसी आधार पर वाइब्रेशन से चलेगा। तो साइंस का जो लेटेस्ट रिसर्च है, तो एक दिन मैं एयरपोर्ट पर बैठी थी, फ्लाइट हमारा लेट था, तो डिस्कवरी चैनल चल रही थी वहां पर, तो डिस्कवरी चैनल में उस समय दिखाया कि लेटेस्ट साइंस का जो रिसर्च था, तो उसमें बताया कि एक व्यक्ति ने ये रिसर्च किया कि नारी अपने आप में, जैसे दुनिया में भी लोग कहते कि नारी परमात्मा की संपूर्ण कृति है, संपूर्ण कृति है, तो उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे ये संपूर्ण कृति है, तो कहा कि नारी का जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे जो हड्डी है अपनी, तो हड्डी के अंदर पोलार है, पोलार है, और उसमें एक जेल होता है, जेल, जेल जैसा अंदर बहता है, स्राव होता है, तो उसी जेल में स्पर्म तैयार होता है, यानी बीज तैयार होता है, और वही संकल्प करने से वो बीज जैसे बाहर आएगा और उसी से योग बल से जन्म होगा। कहने का भावात एक संकल्प क्या वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और वो संकल्प का वाइब्रेशन जैसे नारायण जैसे संकल्प का वाइब्रेशन देगा लक्ष्मी को, और लक्ष्मी जैसे उसको उस संकल्प को धारण करते ही वो बोन मैरो से जैसे के उसका बीज निकलेगा और वही गर्भ को धारण करेगा और वो गर्भ महल उसका होगा और उसी से ही बच्चा उसका पैदा होगा। तो कहने का भावार्थ कि अभी साइंस ने भी ये स्वीकार कर दिया कि भोग बल की आवश्यकता नहीं है उत्पत्ति के लिए, लेकिन योग बल से यानी अपने आप में नारी संपूर्ण है जो उसकी उत्पत्ति कर सकती है।
धन्यवाद दीदी जी, आपने हमें बहुत टाइम दिया, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, और आप हमारे बच्ची में आए जो 2 महीने नहीं थे, परंतु कुछ योग बल हमारा भी होगा तभी आप हमारे बच्ची में आए, ये भी पुण्य के खाते में जमा हो गया। थैंक यू दीदी, 2 मिनट बाबा को याद।